देखिए भाई, किताब पर हफ्तुम इसमें तफजील व इस्तेमाल ओ बरसे वजास बमीन चूं जैदुन अफजल मिन आमरीन या ब अलिफ लाम चूं जा अनी जैदुनिल अफजलु या ब इजाफत चूं जैदुन अफजलुल कौमी व अमल ओ दरफाइल बाशद व आ हुआस फाइल अफजलु के दरो मुस्ततिर अस्त। हश्तुम मसदर बशर्ते आ के मफूल मुतलक न बाशद अमल फ़ेअलश कुनत चूं आ जबनी ज़र्बु ज़ैदिन आमरन। अस्माए आमिला के बारे में हम पढ़ रहे थे और साहिब नहमीर ने आपको बतलाया कि अस्माए आमिला जो हैं वो 11 किस्म पर हैं। पहली किस्म जो है अस्माए शर्तिया हैं। अस्माए शर्तिया वो हैं जो हैं तो इसम लेकिन इन के माना में हैं और शर्त वाला माना अदा करते हैं और वो 9 हैं भाई, 9 इन्होंने आपको बतलाया। और ये दो जुमलों पर दाखिल होते हैं, पहले को शर्त कहते हैं और दूसरे को जजा, और ये फेले मुजारे को जजम देते हैं। दूसरा जो था वो अस्माए अफाल हैं जो फेले माजी के माना में हों भाई। तीसरा वो अस्माए अफाल जो अमर हाजिर के माना में हों। और चौथी किस्म थी इसमें फाइल जब वो हाल और इस्तकबाल के माना में हो तो वो अपने फेल मारूफ वाला अमल करता है बशर्ते के 6 चीजों में से किसी एक पर उसने एतमाद किया हो। और वो 6 चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 मुबतदा, नंबर 2 मौसूफ, नंबर 3 जुलहाल, नंबर 4 इसमें मौसूल, नंबर 5 हमजा इस्तेफाम और नंबर 6 हर्फ नफी। तो ये इन पर एतमाद होगा और फिर ये अमल करेंगे। अगर इनका फाइल इसमें जाहिर आया तो उसको भी रफा देंगे और मफूल वगैरह आए तो उनको ये नसब देंगे। और मैंने आपको ये भी बतलाया था कि ये इनके लिए जो शर्तें जिक्र हुई ये इसमें जाहिर में अमल के लिए हैं। किसमें? इसमें। अगर ये सिर्फ जमीर के अंदर अमल कर रहे हो जो इन्हीं के अंदर छुपी हो, जैसे जैदुन कायमुन, ये कायमुन इस वक्त सिर्फ हुआ जमीर को रफा दे रहा है जो इसके अंदर छुपी हुई है और किसी चीज में यह अमल नहीं कर रहा। तो जब सिर्फ ये अपनी जमीर में अमल कर रहा हो और किसी चीज में अमल न कर रहा हो तो फिर कोई शर्त नहीं है, यह हर हाल में अमल करेगा, फिर चाहे ये माजी के माना में ही क्यों ना हो भाई। तो देखो जैदुन कायमुन अमसी, जैद खड़ा था गुज़श्ता कल, तो ये मैंने क़याम जैद के लिए कब साबित किया? गुज़श्ता कल, यानी माजी के माना में। लेकिन फिर भी कायमुन इसके अंदर जो हुआ जमीर है कायमुन उसको रफा दे रहा है, तो जमीर में अमल करने के लिए कोई शर्त नहीं है भाई। और दूसरी बात मैंने ये आपको बतलाई थी कि जब इसमें फाइल पर अलिफ लाम आ जाए तो फिर उस वक्त भी ये इसमें हाल या इस्तकबाल की कैद नहीं है, फिर ये हर सूरत में अमल करेगा, चाहे हाल के माना में हो, चाहे इस्तकबाल के और चाहे माजी के माना में हो। उसके बाद गुज़श्ता सबक में आपने इसमें मफ़ऊल के बारे में पढ़ा और इन्होंने आपको बतलाया कि इसमें मफ़ऊल में भी वही शर्तें हैं जो इसमें फाइल में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें फाइल जो है वो फाइल को रफा देता है, वो फिल मारूफ जैसा अमल करता है, और इसमें मफूल नायबुल फाइल को रफा देता है, ये फेल मजहूल जैसा अमल करता है। लेकिन इसमें भी वही शर्तें, ये किस माना में होना चाहिए? हाल या इस्तकबाल के माना में, और 6 चीजों में किसी एक पर एतमाद हो भाई, 6 चीजों में से किसी। उसके बाद छठी किस्म जो थी वह सिफत मुशब्बा पड़ी अस्माए आमिला की, छठी किस्म भाई। और मैंने आपको बतलाया था कि सिफत मुशब्बा ये भी अपने फेले मारूफ जैसा अमल करती है और ये सुबूत पर दलालत करती है। इसमें फाइल जो है वो हुदूस पर दलालत करता है। हुदूस का माना है एक चीज ना हो फिर पाई जाए और फिर गुजर भी जाए, यानी उसमें एक चीज का होना हो, और होना किसी जमाने में होता है या माजी में या हाल में या इस्तकबाल में, जबकि सिफत मुशब्बा में एक चीज के लिए दूसरी चीज का सबूत होगा, उसमें जमाने की कैद नहीं होती भाई। जैदुन जारिबुन, जारिबुन में क्या है, जर्ब का हुदूस है, जर्ब का होना बतलाया जा रहा है कि जैद ने पिटाई की है या पिटाई कर रहा है या पिटाई करेगा। देखो किसी न किसी जमाने में होगी ये पिटाई भाई। तो इसमें फाइल किस पर दलालत करता है, हुदूस पर। दोहराएं भाई जुबान से, इसमें फाइल किस पर दलालत करता है, हुदूस। हुदूस का क्या माना, होना, एक चीज का होना, और होना किसी जमाने में होता है, माजी में, हाल में या इस्तकबाल में। जबकि सिफत मुशब्बा सबूत के लिए आती है कि एक चीज दूसरी चीज के लिए साबित है। जैदुन तवीलुन, देखो ये तवील क्या है, सिफत मुशब्बा, जैद लंबे कद वाला है। अब इसमें जमाने की कैद नहीं कि माजी में लंबे कद वाला था या अभी हाल में है या मुस्तकबिल में है, बल्कि ये लंबा कद जब साबित हो जाए तो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। तो इसमें देखो जैद के लिए लंबे कद का सबूत है, इसमें जमाने की कैद नहीं। तो आप खुद गौर कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं जैदुन आकिलुन, जैद खाना खाने वाला है। मैंने बताया खाना खाने वाला, आपको समझाने के लिए बताया, वरना यह माना मुनासिब नहीं है भाई। जैदुन आकिलुन, ये माजी में उसने खाया होगा या हाल में खा रहा होगा या मुस्तकबिल में खाएगा, तो उसी के मुताबिक तर्जमा करें। अगर माजी में खाया है तो जैदुन आकिलुन, तर्जमा करें जैद ने खाना खाया, माजी वाला तर्जमा करें। अगर हाल वाला माना हो जैदुन आकिलुन, फिर क्या तर्जमा होगा, जैद खाना खा रहा है। और अगर मुस्तकबिल की बात है तो उसके मुताबिक तर्जमा करें जैदुन आकिलुन, क्या तर्जमा होगा, जैद खाना खाएगा। बात समझ में आ गई। तो बहरहाल फर्क जो है वो इसमें फाइल जो है वो हुदूस पर दलालत करता है, उसमें जमाने की कैद होगी, जबकि सिफत मुशब्बा सबूत पर दलालत करती है, उसमें जमाने की कैद नहीं होती। और मैंने मिसाल से वजाहत की थी सामिउन और समीउन। सामिउ किसी शख्स को उस वक्त कहेंगे जब वो कोई आवाज सुने, और ये आवाज को सुनना ये किसी जमाने में होगा या माजी में या हाल में या इस्तकबाल में। और समीउ का माना यह है कि उसमें सुनने की सलाहियत है। तो समीउ इसमें उसके लिए समा की सिफत साबित है, सुनने की सिफत साबित है। तो इसमें होना नहीं कि आवाज सुनी है तो हम समय कह रहे, नहीं, समय का माना है उसमें सुनने की सलाहियत है, आवाज चाहे आए या ना आए उसमें सुनने की सलाहियत है। हां जब भी आवाज आएगी वो उसको सुन लेगा। तो फर्क समझ में आया। तो जैदुन सामिउन का क्या माना, जैद ने सुना, या मालूम किसी आवाज को सुना है या सुन रहा है या सुनेगा किसी न किसी जमाने में। और जैद उन समीउ उनका क्या माना जी, यानी जैद के लिए सुनने की सिफत साबित है, वो सुन सकता है, जब भी आवाज आएगी वो उसको सुन लेगा। तो सिफत मुशब्बा में जमाने की कैद नहीं होती भाई, लिहाजा इसीलिए साहिब नहमीर ने भी यहां हाल और इस्तकबाल का लफ्ज जिक्र नहीं किया। इसमें फाइल का जब जिक्र किया था वहां उन्होंने खुद हाल और इस्तकबाल का लफ्ज जिक्र किया था कि बेमाने हाल या इस्तकबाल, और इसमें मफूल का जिक्र किया वहां भी बतलाया बेमाने हाल और इस्तकबाल, लेकिन सिफत मुशब्बा में उन्होंने हाल और इस्तकबाल की कैद नहीं लगाई। तो सिफत मुशब्बा अपने फेल जैसा अमल करती है। सिफत मुशब्बा में मैंने यह भी आपको बतलाया था कि यह फेले लाजिम से बनती है, कभी भी फेले मुतादी से नहीं बनती, और यह अपने फेले मारूफ जैसा अमल करती है, लेकिन इसका अमल अपने फेल से ज्यादा है। और वो ये कि यह मफूल को भी नसब देती है, हालांकि यह फेले लाजिम से बनी है और फेले लाजिम के लिए तो मफूल आता ही नहीं। तो ये, लेकिन ये बाज जगह मफूल को नसब देती है भाई। हम अरबी कलाम में गौर करते हैं तो बाज जगह देखते हैं सिफत मुशब्बा मफूल को नसब दे रही है, तो फिर उलमा हैरान होते हैं कि भाई ये तो फेले लाजिम से बनी है और ये कैसे मफूल को नसब दे रही है। तो नहवी हजरात फिर बतलाते हैं कि ये मफूल को नसब दे रही है, इसका यह अमल इसके फेल से जायद है, बढ़कर है, यानी अमल देने में ये अपने फेल से भी बढ़ गई, और फिर उसको मफूल नहीं कहते क्योंकि ये तो फेले लाजिम से बनी है, फेले लाजिम के लिए तो मफूल नहीं आता, उसको फिर शबीहे मफूल कहते हैं या मुशाबे मफूल कहते हैं, यानी मफूल के मुशाबे है, मफूल नहीं है, या शबीह का भी वही माना भाई, मफूल के मुशाबे है भाई। और सिफत मुशब्बा के बहुत से औजान हैं, और जैसे ये हसनुन इन्होंने जिक्र किया, हसनुन ये क्या है, सिफत मुशब्बा है। इसी तरह फाइल वजन, फाइल शरीफ भाई, शरीफ ये सिफत मुशब्बा है, फाइल वजन। करीमुन ये भी फाइल वजन है। इसी तरह अलीमुन ये भी क्या है, फाइल वजन। समीउन ये भी क्या है, फाइल। तो ये फाइल वजन इसका मशहूर वजन है। इस वजन पर आपको जो भी लफ्ज मिल जाए समझ जाए ये सिफत मुशब्बा है भाई। तो इसके अमल के लिए भी वही एतमाद जरूरी है, लेकिन ये छह चीजों पर एतमाद नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ पांच चीजों पर एतमाद करती है। छठी चीज जो इसमें मौसूल है उस पर इसका एतमाद नहीं, क्योंकि इस पर जो अलिफ लाम आता है वो इसमें मौसूल नहीं होता, वो हर्फ होता है, वो इसको मारिफा बनाने के लिए आता है। तो बाकी चीजों पर इसका एतमाद होगा। कभी ये मुब्तदा पर एतमाद करके अमल करेगी, कभी मौसूफ पर, कभी कभी जुलहाल पर, कभी हमजा इस्तेफाम पर, और कभी हर्फ नफी पर। तो उन पर एतमाद करके अमल करेगी, और इसमें हाल और इस्तकबाल की शर्त भी नहीं है। और इसमें भी उसी तरह है कि अगर ये सिर्फ अपनी जमीर में अमल कर रही हो फिर कोई शर्त नहीं है भाई। इसका फाइल क्या हो, इसी के अंदर जमीर हो और कोई मामूल आगे नहीं है, तो फिर उसमें कोई शर्त नहीं है, उसमें हर हाल में यह अमल करेगी। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, कहते हैं हफ्तुम, हफ्तुम इसमें तफजील व इस्तेमाल ओ बरसे वजास्त बमीन चू जैदुन अफजल मिन आमरीन, या ब अलिफ उलाम चू जा अनी जैदुन अफजलु, या ब इजाफत चू जैदुन अफजलुल कौमी। वह अमल ओ दरफाइल बाशद व आहू अस्त फाइल अफजलु के दरो मुस्ततिर अस्त। सातवीं किस्म आ गई अस्माए आमिला की बई, और वो इसमें तफजील है, इसमें तफजील। वह अस्माए आमिला जरा जल्दी जल्दी दोहरा लें। नंबर एक अस्माए शर्तिया, नंबर दो इसमें फेल बमान है माजी, नंबर तीन इसमें फेल बमान है अमर हाजिर, नंबर चार इसमें फाइल, नंबर पांच इसमें मफूल, नंबर छह सिफत मुशब्बा, और नंबर सात आज हम पढ़ रहे हैं इसमें तफजील। फिर दोहराएं, नंबर एक अस्माए शर्तिया, नंबर दो इसमें फेल बमाने माजी, नंबर तीन इसमें फेल बमाने अमर हाजिर, नंबर चार इसमें फाइल, नंबर पांच इसमें मफूल, नंबर छह सिफत मुशब्बा, और नंबर सात क्या है, इसमें तफजील है। और यहां मैंने आपको बतलाया था भाई, मैं बार बार आपको बतला रहा हूं कि जब भी जुमले को किसी चीज से जोड़ना हो दरमियान में रबत जरूरी, और इसी तरह शिबे जुमला को जब किसी चीज से जोड़ना हो तो वहां पर भी दरमियान में रबत जरूरी है। और आप देख रहे हैं इन्होंने जितनी मिसालें जिक्र की इसमें फाइल के अंदर देख लें, इन सब में वो रबत देते जा रहे हैं। जैदुन काइमुन अबूहु, किताब पर नजर है ये अबूहू के आखिर में हा जमीर क्यों लाए, रबत देने के लिए, क्योंकि इसके बगैर रबत नहीं बनता था। आगे चू जैदुन जारिबुन अबूहु आमरन, यहां फिर अबूहू लेकर आए, क्यों लेकर आए, रबत देने के लिए। और इसी तरह मरर तो बी रजुलिन जारिबिन अबूहू बकरन, यहां फिर अबूहू का लफ्ज लाए, क्यों, रबत देने के लिए। अगली मिसाल है जा अनिल काइमु अबूहू, यहां भी अबूहू हा जमीर लेकर आए। व जा अनिल जारिबु अबूहू अमरन, यहां भी अबूहू लेकर आए रबत देने के लिए। आगे जा अनी जैदुन राकिबन गुलामुहू फरसन, यहां गुलामुहू के साथ ये हा जमीर क्यों लाए, रबत देने के लिए। आगे आगे इसमें मफूल के अंदर भाई जैदुन मजरूबुन अबूहू, यहां अबूहू के साथ हा जमीर क्यों लाए, रबत देने के लिए। आगे आमरुन मुअतन गुलामुहू दिरहमन, यहां देखो गुलामुहू के साथ हा जमीर लाए रबत देने के लिए। व बकरुन मालूमुन इब्नुहू फाजिलन, यहां इब्नुहू लाए, ये इब्नुहू में हा जमीर क्यों लाए, रबत देने के लिए। और इसी तरह खालिदुन मुखबरुन इब्नुहू अमरन फाजिलन, यहां भी इब्नुहू लाए हा जमीर उसके साथ लाए, किस लिए, रबत देने के लिए। और आगे जैदुन हसनुन गुलामुहू, यहां पर भी गुलामुहू के साथ हा जमीर लाए, किस लिए, रबत देने के लिए। भाई ये इस जमीर लेकर आए गुलामुहू कहा, गुलामहू को फाइल बनाया हसनुन के लिए, आमर को नहीं बनाया। जैदुन हसनुन आमरुन, जैदुन हसनुन आमरुन, क्यों? क्योंकि फिर रबत नहीं आता था। जैदुन हसनुन आमरुन, आमर मसन जैद का कौन है? जैद का गुलाम है, उसका नाम क्या है? आमर है। तो गुलामहू कह लो या आमर कह लो, एक बात है। जैद के गुलाम का क्या नाम है? आमर है। गुलामहू को उठाओ और जरा आमर रखो, देखो खराबी आपको समझ में आ जाएगी। जैदुन है मरफूल अफजान मुबतदा, हसनुन मरफूल अफजान सीगा सिफत मुशब्बा, और आमरुन मरफूल अफजान उसका फाइल। सिफत मुशब्बा अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? रबत नहीं है। तो ये इसलिए वो जगह जगह ये जमीरें ला रहे हैं कि इसके बगैर बात ही नहीं बनती, तो इसलिए इन्होंने गुलामहू कहा, नाम नहीं लिया उसका। भाई आगे देखिए भाई, हफ्तुम इसमें तफजील वस्तेमाल ओ बरसे वजह बमीन चू जैदुन अफजल मिन आमरिन या ब अलिफ उलाम चू जा अनी जैदुन इल अफजल या ब इजाफत चू जैदुन अफजल उल कौम। आगे इसमें तफजील आ गया भाई, इसमें तफजील आप गर्दानों के अंदर पढ़ चुके हैं भाई, जैसे जाराबा की गर्दान पड़ी और सरफे सगीर, और उसमें आप क्या कहते हैं? वह अफअलु तफजील इल मुज़क्करु मिन्हु अज़रबु वल जम्उ अज़ारिबु, और इसी तरह बाब नसरा से कैसे पढ़ा? वह अफअलु तफजील इल मुज़क्करु मिन्हु अंसरु वल जम्उ अनासिरु। तो ये अज़रब अंसर वगैरह ये जो अफअल वजन है, ये इसमें तफजील का वजन है, और इसमें तफजील किसी चीज की ज्यादती बयान करता है, किसी सिफत की ज्यादती बयान करता है। जैदुन जारिबुन का माना है जैद पिटाई करने वाला है या पिटाई कर रहा है, मालूम हुआ जर्ब उसकी सिफत है, वो क्या कर रहा है? जर्ब लगा रहा है। लेकिन इसमें तफजील में जर्ब की ज्यादती बतलाई जाएगी, जो यानी जिस बाब से भी आ रहा है उस चीज की उस सिफत की ज्यादती बयान होती है। तो इसमें ज्यादती बयान होती है, और ज्यादती भी किसी चीज के मुकाबले में बयान होगी, वैसे ज्यादती नहीं। जैदुन अज़रबु मिन आमरिन, जैद ज्यादा पिटाई करने वाला है, मिन आमरिन आमर से, जैद आमर से ज्यादा पिटाई करने वाला है, या तर्जमा यूं कर लें जैद आमर के मुकाबले में ज्यादा पिटाई करने वाला है। तो ये मीन जो साथ आता है इसका तर्जमा से के साथ कर लें, जैद आमर से ज्यादा पिटाई करने वाला है, या इसका तर्जमा मुकाबले के साथ कर लें जैद आमर के मुकाबले में ज्यादा पिटाई करने वाला है। मालूम हुआ आमर भी पिटाई करता है, जैद भी पिटाई करता है, लेकिन कौन ज्यादा पिटाई करने वाला है? जैद। और वैसे ज्यादा है या आमर के मुकाबले में ज्यादा है? आमर के मुकाबले में। तो इसमें तफसील में हमेशा दूसरी चीज के मुकाबले में ज्यादती बयान की जाती है, और कभी वैसे ज्यादती बयान की जाए उसके लिए फिर मुबालगे के सीगे इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैद बहुत ज्यादा पिटाई करने वाला है, किसी से मुकाबला नहीं मैं कर रहा, वैसे बयान कर रहा हूं कि जैद बहुत ज्यादा पिटाई करने वाला है, तो फिर मैं जारिब से मुबालगे का सीगा जर्राब ले आऊंगा, जैदुन जर्राबुन, जैद बहुत ज्यादा पिटाई करने वाला है। तो देखो जर्राब ये मुबालगे का सीगा है, मुबालगे का सीगा, और ये भी जर्ब की ज्यादती को बयान कर रहा है, लेकिन यहां किसी से मुकाबला नहीं है, मुतलकन मैं वैसे ही बयान कर रहा हूं कि जैद बहुत ज्यादा पिटाई करने वाला है। लेकिन जब किसी दूसरे के मुकाबले में ज्यादती बयान करना मकसद हो तो फिर ये जर्राबुन जैसे मुबालगे के सीगे नहीं लाते, बल्कि फिर वहां इसमें तफजील लाते हैं। मसलन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैद आमर के मुकाबले में ज्यादा पिटाई करने वाला है, तो अब मैं जर्राब नहीं लाऊंगा बल्कि अज़रबु लेकर आऊंगा, जैदुन अज़रबु मिन आमरिन, जैद ज्यादा पिटाई करने वाला है आमर के मुकाबले में। बात समझ में आ गई? तो ज्यादती बयान करने के लिए दो किस्म के सीगे आते हैं, एक मुबालगे वाले और एक इसमें तफजील। लेकिन फर्क क्या कि मुबालगे वाले जो सीगे हैं वो मुतलकन ज्यादती बयान करते हैं, उसमें किसी के साथ मुकाबला नहीं होता, किसी दूसरे के मुकाबले में ज्यादती बयान नहीं होती, जबकि इसमें तफजील के अंदर किसी दूसरे के मुकाबले में ज्यादती बयान होती है। फर्क समझ में आया कि मुतलक ज्यादती बयान करना हो तो कौन सा सीगा इस्तेमाल करते हैं? مبالغے کے، اور کسی کے مقابلے میں زیادتی بیان کرنا ہو تو اس میں تفضیل استعمال کرتے ہیں. زید اضرب من عمر، زید عمر کے مقابلے میں زیادہ پٹائی کرنے والا ہے. یا دوسری مثال لے لو، زید بھی منع کرنے والا ہے اور عمر بھی منع کرنے والا ہے، اور میں آپ کو صرف زید کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ زید بہت زیادہ منع کرنے والا ہے، تو منع کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مانع، منع کرنے والا. منع یمنعو کا مانا روکنا، منع کرنا، اس میں فاعل کیا آئے گا؟ مانع. زید مانع، اس کا تو ترجمہ ہے زید منع کرنے والا ہے. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا منع کرنے والا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں زید زیادہ منع کرنے والا ہے، بہت زیادہ منع کرنے والا ہے، تو پھر کیا کہوں گا؟ زید مناع، فعال وزن پر لے آئیں گے، زید مناع. دیکھو اب کسی سے مقابلہ نہیں میں بیان کر رہا، عمر کا ذکر یہاں نہیں ہے، عمر کے مقابلے میں میں نہیں کہہ رہا، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ زید بہت زیادہ منع کرنے والا ہے، تو میں پھر مبالغے کا صیغہ استعمال کروں گا، زید مناع. اور اگر میں عمر کے مقابلے میں زیادتی بیان کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں اس میں تفضیل استعمال کروں گا، میں کہتا ہوں زید عمر سے زیادہ منع کرنے والا ہے، تو اب مناع نہیں لاؤں گا بلکہ کیا کہوں گا؟ امنع، زید امنع من عمر، زید جو ہے عمر کے مقابلے میں زیادہ منع کرنے والا ہے. اور مین کا ترجمہ سے کے ساتھ کریں، یا مقابلے میں، مقابلے میں زید امنع من عمر، زید زیادہ منع کرنے والا ہے، من عمر عمر سے، زید عمر سے زیادہ منع کرنے والا ہے، تو مین کا ترجمہ سے کے ساتھ کر لیں، یا مین کا ترجمہ کے مقابلے میں کر لیں، زید امنع، زید زیادہ منع کرنے والا ہے، من عمر عمر کے مقابلے میں، عمر کے مقابلے میں. تو یہ اس میں تفضیل جو ہے ثلاثی مجرد سے، ثلاثی مجرد سے آتا ہے اور افعلو وزن پر ہوتا ہے، افعلو. لیکن یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھنا کہ یہی افعلو وزن صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے. آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آ جائے اور افعلو وزن پر ہو، آپ فوراً آنکھیں بند کر کے یہ نہ کہہ دیں یہ اس میں تفضیل ہے، بلکہ اسی افعلو وزن پر صفت مشبہ بھی آتی ہے اور اس کو افعلو صفتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو افعلو تھا یہ تو تھا اس میں تفضیل، اور ایک اور افعلو، وہ دوسرا افعلو جو صفت ہے یعنی صفت مشبہ ہے، اس کو افعلو صفتی کہتے ہیں. اور یہ ثلاثی مجرد کے ان بابوں سے آئے گا جن میں رنگ والا معنی ہو یا جن میں کوئی عیب والا معنی ہو. اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے آتا ہے، باقی ثلاثی مزید فی یا رباعی مجرد وغیرہ سے نہیں آتا، اور ثلاثی مجرد کے بھی صرف ان بابوں سے آئے گا جن میں رنگ یا عیب والا معنی نہ ہو. جن بابوں میں رنگ یا عیب والا معنی ہو ان سے جو افعلو وزن آئے وہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ افعلو صفتی ہے، یعنی صفت والا افعلو ہے، یعنی صفت مشبہ والا افعلو ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے اضربو، اضربو یہ اس میں تفضیل ہے. اضربو کا کیا معنی؟ کسی کے مقابلے میں زیادہ پٹائی کرنے والا. امنعو یہ اس میں تفضیل ہے، کیا معنی؟ کسی کے مقابلے میں زیادہ منع کرنے والا. انصارو یہ اس میں تفصیل ہے، کسی کے مقابلے میں زیادہ مدد کرنے والا، نصارا سے ہے. جبکہ ابیض، ابیض آپ پڑھتے رہتے ہیں، ابیض کا معنی ہے سفید، یہ اس میں تفصیل نہیں ہے. اگر اس میں تفصیل ہوتا تو اس کا معنی ہوتا زیادہ سفید، حالانکہ اس کا معنی زیادہ سفید نہیں بلکہ سفید، صرف سفید ہے. یہ صفت مشبہ ہے، اس کو افعلو صفتی کہتے ہیں. تو ازربو یہ بھی افعلو وزن، اور ابیزو یہ بھی افعلو وزن، لیکن ایک افعلو اس میں تفضیل ہے اور ایک افعلو صفتی ہے بھائی. تو دیکھو ابیز یہ رنگ بیان ہو رہا ہے، اور میں نے بتایا ثلاثی مجرد کے جن بابوں کا رنگ والا معنی ہو ان سے اس میں تفضیل نہیں آتا بلکہ افعلو صفتی آتا ہے. تو ابیز کا کیا معنی؟ سفید، زیادہ سفید نہیں بلکہ سفید. اسی طرح احمر، احمر کا معنی ہے سرخ، سرخ. देखो इसमें भी ज्यादा वाला माना नहीं करना, ज्यादा सुर्ख, क्योंकि इसमें तफसील नहीं है बल्कि अफालू सिफती है। इसी तरह अजरक, अजरक, अजरक का माना नीला, नीला हमजा है जा रा और काफ दो नुक्तों वाला, अजरक, अजरक का माना है नीला, नीला। और देखो ये भी रंग है, ये सिफत है, ये ज्यादा नीला नहीं क्योंकि इसमें तफसील नहीं है। और इसी तरह अखजर, हमजा खा वाद और रा, अखजर का माना सबज, ये अफालु सिफती है, इसमें तफजील नहीं। अगर इसमें तफजील होता फिर क्या माना होता, ज्यादा सबज, हालांकि इसका माना तो ज्यादा सबज नहीं है। इसी तरह जिस बाब में ऐब वाला माना हो उससे भी अफाल वजन पर इसमें तफजील नहीं आता बल्कि सिफत मुशब्बा आती है। जैसे आरज, आरिजा या आरजू के माना है लंगड़ा होना, आरज का माना हुआ लंगड़ा। अब देखो ये ऐब है, लंगड़ा होना क्या है, ऐब है, तो अब आरज का ये माना नहीं ज्यादा लंगड़ा बल्कि आरज का क्या माना, लंगड़ा। देखो ये ऐब वाला माना है तो ये सिफत मुशब्बा है, इसमें तफजील नहीं है। इसी तरह आमा, आमा का माना है अंधा, देखो ये अफालु सिफती है, इसमें तफजील नहीं वरना क्या माना होता, ज्यादा अंधा। तो अंधा, जो अंधा है अंधा है भाई, उसमें ज्यादा और कम होने वाली तो बात है ही नहीं। तो ये आमा क्या है, अफालो सिफती है, ये सिफत मुशब्बा है। बात समझ में आ गई, क्या हासिल है कलाम, क्या कि अफाल वजन सिर्फ इसमें तफजील के लिए नहीं आता बल्कि सिफत मुशब्बा के लिए भी आता है। और सिफत मुशब्बा किस बाब से आएगी, जिनमें रंग या ऐब, जाहिरी ऐब वाला माना हो तो वहां से सिफत मुशब्बा आएगी। अच्छा, तो ये इसमें तफसील की बात मैं बयान कर रहा हूं भाई, आगे इसमें तफसील के इस्तेमाल के तरीके आपको बतलाएंगे। याद रखो इसमें तफसील जो है उसके इस्तेमाल के तीन तरीके हैं, या तो उसके साथ मीन इस्तेमाल होगा, जैसे अभी मिसालें गुजरी, जैदुन अजरबो मीन आमरीन, देखो मीन साथ जरूर आएगा, और वो जिसके मुकाबले में ज्यादती बयान की जा रही है वो मीन के बाद आएगा। जैद उन अजरब मीन आमरीन, बतलाया जा रहा है जैद ज्यादा पिटाई करने वाला है, और किसके मुकाबले में, अमर के मुकाबले में, और अमर देखो मीन के बाद है, मीन के यानी जिस पर ज्यादती बयान की जा रही है वो मीन के बाद आता है। तो इसमें तफजील के इस्तेमाल के तीन तरीके हैं, पहला तरीका यह कि किसके साथ इस्तेमाल हो, मीन के साथ, दूसरा तरीका यह कि यह अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल हो। अजरबू मीन आमरीन, ये मीन आमरीन को खत्म कर दें और अजरबू पर अलिफ लाम ले आए, जैदुनिल अजरबू, अल अजरब आ गया, अलिफ लाम आ गया, यह दूसरा तरीका है। माना क्या होगा, जैद उन अजरब मिन अमरीन, क्या तर्जमा था, जैद अमर के मुकाबले में ज्यादा पिटाई करने वाला है, और जैद उनिल अजरबू, अब तो अलिफ लाम आ गया, अब क्या तर्जमा होगा, मालूम हुआ अब सब चीजों के मुकाबले में ज्यादती बयान हो रही है क्योंकि इसमें तफजील है, और इसमें तफजील वैसे ज्यादती बयान करता है किसी चीज के मुकाबले में, किसी चीज के मुकाबले में, और यहां कोई चीज जिक्र नहीं, मालूम हुआ सब चीजों के मुकाबले में ज्यादती बयान की जा रही है। जैद उनिल अजरबू का माना है जैद सबसे ज्यादा पिटाई करने वाला है, जैद, देखो वहां अमर जिक्र था तो किसके मुकाबले में ज्यादती बयान हुई, अमर, और यहां कोई जिक्र नहीं, मालूम हुआ सबके मुकाबले में ज्यादती बयान हो रही है। तो जैद उनिल अजरबू क्या माना, जैद सबसे ज्यादा पिटाई करने वाला है, जैदुनिल अफजलु क्या माना, सबसे अफजल है, सबसे बेहतरीन है। बात समझ में आ गई, यह दूसरा तरीका है इसमें तफजील का कि अलिफ लाम के साथ ले आओ। तीसरा तरीका यह है इसमें तफजील के इस्तेमाल का कि इसके इजाफत कर दो, आगे मुजाफिले को ले आओ, जैसे जैदुन अजरबुल कौमी, जैदन अजरबुल कौमी, अजरब मुजाफ, अल कौमी मुजाफुन इले, तो ये इजाफत के साथ तीसरा तरीका है इसमें तफजील के इस्तेमाल का। अजरबुल कौमी, कौम मर्दों की जमात को कहते हैं, तीन से लेकर दस तक मर्दों की जमात हो उसको अरबी में कौम कहते हैं, कौम। बात समझ में आ गई। एक उर्दू में हम कौम का लफ्ज बोलते हैं, यहां कौम का लफ्ज वो कबीले के माना में होता है। कबीला अरबी में एक मर्दों की जमात जिसमें मर्द हो, औरतें ना हो, सिर्फ मर्दों की जमात। तो जैदुन अफजलुल कौमी या जैदुन अजरबुल कौमी, जैद ज्यादा पिटाई करने वाला है। अल कौमी उस कौम, यूं को उस कौम में से, उस कौम में से सबसे ज्यादा पिटाई करने वाला जैद है, यानी उन लोगों में सबसे ज्यादा पिटाई करने वाला जैद है। माना समझ में आ रहा है, जैदुन अजरबुल कौमी, क्या माना? अजरबु की इजाफत हो रही है किसकी तरफ? अल कौम की तरफ। मालूम हुआ जैद सबसे ज्यादा पिटाई करने वाला है, किसके मुकाबले में? उस कौम के, यानी उस कौम में से जैद सबसे ज्यादा पिटाई करने वाला है। जैदुन अजरबुल कौमी या जैदुन अफजलुल कौमी, क्या माना? जैद उन लोगों में से सबसे अफजल है, उन सारे लोगों में से वो सबसे अफजल है। माना समझ में आ गया। तो इसमें तफसील में एक चीज के अंदर ज्यादती बयान की जाती है, वसफ की ज्यादती, और वो वसफ की ज्यादती किसी चीज के मुकाबले में होगी। तो इसके इस्तेमाल के तीन तरीके हैं, कभी ये इस्तेमाल होगा मीन के साथ, कभी अलिफ लाम के साथ, और कभी इजाफत के साथ। और याद रखना, एक वक्त में एक ही तरीके से इस्तेमाल होगा। जब अलिफ लाम आ गया तो फिर मीन नहीं आएगा साथ, और अगर मीन आ गया तो फिर अलिफ लाम नहीं आएगा। इसी तरह जब इजाफत हो रही हो तो फिर मुजाफ पर तो अलिफ लाम वैसे भी नहीं आ सकता, लेकिन आगे मीन भी नहीं आएगा भाई। एक वक्त में एक ही तरीके से इस्तेमाल होगा, या किसके साथ? मीन के साथ, या अलिफ लाम के साथ, या इजाफत के साथ। तीन तरीकों में से एक तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे अपने कलाम में। अगर आप मीन के साथ लाना चाहते हैं तो फिर अलिफ लाम भी ना लाना और इजाफत भी ना करना। अगर आप अलिफ लाम लाना चाहते हैं तो फिर इजाफत भी नहीं करनी और मीन नहीं, और मीन को भी नहीं लाना। और अगर आप इजाफत के साथ लाना चाहते हैं तो फिर अलिफ लाम भी नहीं लाना और मीन भी नहीं लाना। जी, तरकीब कीजिए। जैदुन अफजलु मिन अमरिन, जैदुन मरफू लफजान मुबतदा, अफजलु मरफू। अब याद रखो, ये जो इसमें तफसील है ये गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ वो है जिस पर कसरा भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती। गैर मुनसरिफ पढ़ा था या नहीं? 16 किस्में बयान हुई थी जहां एराब के एतबार से इसम की 16 किस्में हैं, उनमें से एक क्या था? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ पर कसरा भी नहीं आता, यानी जेर नहीं आएगी, बल्कि इसका जर भी फतहा की सूरत में आएगा। जर भी किस सूरत में आएगा? फतहा की सूरत में आएगा, और नीज इस पर तनवीन भी नहीं आती। तो देखो, जैदुन अफजलु मिन आमरीन, ये अफजलु ये गैर मुनसरिफ है, इसलिए इस पर तनवीन नहीं आ रही। फिर कीजिए तरकीब। जैदुन मरफू लफजान मुबतदा, अफजलु मरफू लफजान सीगा इसमें तफजील। याद रखो, ये सीगा इसमें तफजील, इसने भी शिबे जुमला बनना है। इसने भी क्या बनना है? इसमें फाइल भी क्या बनता था? शिबे जुमला। इसमें मफूल भी क्या बनता है? शिबे जुमला। इसी तरह सिफत मुशब्बा भी शिबे जुमला, और इसमें तफजील भी शिबे जुमला बनता है। और ये जो इनमें से सबसे कमजोर अमल वाला इसमें तफजील है, इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफत मुशब्बा और इसमें तफजील, इनमें सबसे कमजोर अमल वाला कौन है? इसमें इसमें तफजील है। इसमें तफजील, इसी के अंदर एक जमीर छुपी होती है, ये उसको रफा देता है, क्योंकि इसके लिए भी फाइल चाहिए। जैसे सिफत के सीगों के लिए हमेशा फाइल या नाई फाइल चाहिए था, इसमें फाइल के लिए क्या चाहिए? फाइल। इसमें मफूल के लिए क्या चाहिए? नाई फाइल। सिफत मुशब्बा के लिए क्या चाहिए? फाइल। इसी तरह इसमें तफजील के लिए भी क्या चाहिए? फाइल। तो ये जो इसमें तफजील होता है, ये हमेशा एक जमीर को रफा देता है जो इसी के अंदर छुपी होती है, इसी के अंदर छुपी हुई होती है। तो फाइल जरूर चाहिए। क्या कोई फेल बगैर फाइल के आ सकता है?
नहीं।
इसी तरह ये सिफत के सीगे भी बगैर फाइल या नाइब फाइल के नहीं आ सकते। तो इसमें तफजील इनमें सबसे कमजोर है, ये सिर्फ अपने अंदर छुपी हुई एक जमीर को रफा देता है। बाकी इसमें जाहिर, इसमें जाहिर में ये बहुत कम अमल करता है, बहुत ही कम है, और उसकी कुछ खास शर्तें हैं जो अगली किताबों में आप पढ़ेंगे। बस ये अपने अंदर छुपी हुई जमीर को रफा देता है, और वो जमीर तो इसके अंदर छुपी हुई है, वो तो किसी को नजर भी नहीं आ रही, तो वो अमल भी ला अमल की तरह है, गोया अमल कर ही नहीं रहा। बात समझ में आ गई? वो जमीर जिसको ये रफा दे रहा है, कोई रफा जाहिर हो रहा है?
नहीं,
वो तो जमीर है, इसके अंदर छुपी हुई है, और वो जमीर भी मबनी है, और मबनी पर एराब जाहिर नहीं होता। तो ये ऐसी जमीर को रफा देता है जो इसी के अंदर छुपी हुई है, तो ये अमल भी ऐसे ही शुमार करो गोया अमल करता ही नहीं। तो देखो बड़ा ही कमजोर है, बड़ा मामूली सा अमल है। किसमें अमल करता है? जमीर में, जो इसके अंदर छुपी हुई है। इसमें जाहिर में यह अमल नहीं करता, इसमें जाहिर में बहुत कलील अमल है इसका, और वो कुछ शर्तें हैं खास जो अगली किताबों में आप पढ़ लेंगे। तो ये सबसे कमजोर है। अमल करता तो है, अमल करता तो है, फाइल तो जरूर चाहिए, लेकिन इसमें जाहिर में अमल नहीं करता, अपने अंदर छुपी हुई जमीर में करता है। तो बड़ा मामूली सा इसका अमल है जी। तरकीब हम कर रहे थे, जैदुन मरफू लफजान मुबतदा, अफजलो मरफू लफजान इसमें सिगा इसमें तफजील। मरफू क्यों? क्योंकि खबर है जैदुन के लिए, भाई खबर है, और इसके अंदर हुआ जमीर, इसके अंदर
हुआ जमीर,
क्योंकि अगर हुआ जमीर नहीं निकालेंगे तो ये शिबे जुमला हो बनेगा, और शिबे जुमला को जोड़ने के लिए हमेशा क्या चाहिए? रबत चाहिए, तो रबत फिर नहीं रहेगा, तो फिर ये मुब्तदा से जुड़ नहीं सकेगा। तो इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका फाइल, मीन जारा, आमरीन मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये इसी मुतालिक होंगे अफजल से, इसी इसमें तफजील से, इसमें तफजील अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर। हुआ जमीर किसको लौट रही थी? जैद, ये रबत आ गया भाई, तो ये खबर मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तर्जमा करें, जैदुन अफजल मिन आमरीन, जैद अफजल है किसके मुकाबले में? अमर के मुकाबले में। हफ्तुम इसमें तफजील, सातवीं किस्म जो है वो इसमें तफजील है। वह इस्तेमाल ओबर से वजह, और इसका इस्तेमाल तीन वजह पर है, तीन तरीकों पर है। इसमें तफजील का इस्तेमाल बरसे वजास तीन तरीकों पर है। बामीन, मीन के साथ, जो जैदुन अफजल मिन आमरीन, या ब अलिफ लाम, या किसके साथ होगा? अलिफ लाम के साथ, जो जा अनी जैदुन अल अफजल, आया मेरे पास वो जैद अल अफजल जो अफजल है। अभी माना बताया मैंने, मुतलकन ज्यादती बयान हो रही है या किसी के मुकाबले में? इसमें तफजील है, किसी के मुकाबले में ज्यादती बयान हो रही है, और किसके मुकाबले में? कोई जिक्र है
नहीं,
मालूम हुआ सब के मुकाबले में ज्यादती बयान हो रही है। जा अनी जैदुन अल अफजल, तर्जमा करें, आया मेरे पास वो जैद जो सबसे अफजल है। जब मुफजल आल, जिस चीज पर ज्यादती दी जा रही है वो जिक्र ना हो तो फिर सबका मुकाबला जिक्र होता है। जैसे अल्लाहु अकबर आप अजान में कहते हैं, नमाज में कहते हैं अल्लाहु अकबर, लफ्ज अल्लाह मरफू मुबतदा, और अकबर ये क्या है? इसमें तफजील, और इसमें तफजील ये तो किस लिए आता है? मुतलकन बड़ाई बयान करेगा या किसी के मुकाबले में बड़ाई बयान होगी? किसी के मुकाबले में बयान होगी। फिर तो यहां पर तो न अलिफ लाम है, न मीन है, और ना इजाफत है, तो याद रखिए। फिर उलमा बतलाते हैं कि यहां मीन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, और वो इबारत यहां महजूफ है, अकबरु मीन कुल्ली शैन, अल्लाहु अकबरु मीन कुल्ली शैन, अल्लाह बड़े हैं मीन कुल्ली शैन हर चीज से, यानी अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं। और मिन कुल्ली शैइन, इनको इबारत में जिक्र नहीं करते क्योंकि कोई चीज है ही नहीं जो अल्लाह के मुकाबले में जिसकी बड़ाई हो, तो वो उनकी बड़ाई भी अल्लाह के मुकाबले में कुछ है ही नहीं, लिहाजा उनको जिक्र ही नहीं करते भाई। बात समझ में आ गई? तो अल्लाहु अकबर का क्या माना? अल्लाह सबसे बड़े हैं भाई, सबसे बड़े हैं। तो यहां भी इसी तरह जा अनी जैदुन अल अफजलू, आया मेरे पास वो जैद अल अफजलू जो सबसे अफजल है। तरकीब कीजिए, जा फे नून विकाया या जमीर मनसूब महलान मफूल जैदुन मरफू लफजन, मरफू क्यों फाइल है, जा के लिए फाइल चाहिए हर फेल के लिए फाइल, फेल मारूफ के लिए जैदुन मरफू लफजन फाइल है, लेकिन आगे सिफत भी आ रही है, इसको पहले मौसूफ बनाओ जैदुन मरफू लफजन मौसूफ, और अल अफजलो मरफू लफजन सीगा इसमें तफजील, और इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका फाइल, इसमें तफजील अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला, इसमें तफजील अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर सिफत नहीं बन सकती सिफत। हां आपने रबत देना है, हमेशा याद रखो मैं बार बार जिक्र नहीं कर रहा कि आप हर दफा आपने रबत देना है, हुआ जमीर आ जाए उसको देखें ये किसको लौट रही है, अल अफजल इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका फाइल जो किसको लौट रही है जैद, क्योंकि सिफत को किससे जोड़ते हैं मौसूफ से, तो इसमें तफजील अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर सिफत मौसूफ सिफत मिलकर यह फाइल हुआ किसके लिए जा के लिए, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ जा अनी जैदुन निल अफजलू। ये नून कहां से आया, ये तनवीन वाला नून है जैदुन, इसके आखिर में क्या थी तनवीन, और अल अफजल इसके शुरू में अलिफ्लाम है, अलिफ्लाम में हमजा वसली है शुरू वाला, और हमजा वसली दरमियान इबारत में गिर जाता है तो हमजा गिर गया, अल का फिर आगे लाम जो है वो साकिन रह गया, तो लाम भी साकिन और माकबल में जैदुन का नून भी साकिन, तो इज्तिमाई साकिन है नाया दो साकिन इकट्ठे हो गए, और जब दो साकिन इकट्ठे हो तो अगर अव्वल हरफे मद्दा हो तो उसको किरा देते हैं, यानी अलिफ वाव या हो और माकबल की हरकत उनके मुआफिक हो तो उसको गिरा देते हैं, लेकिन माकबल में तो यहां नून है, पहले नून है और फिर लाम है, दोनों साकिन है, तो नून तो हरफे मद्दा नहीं, इसको गिरा तो नहीं सकते, फिर क्या करते हैं फिर उसको हरकत देते हैं पहले वाले को, और असाकिन इजा हुर्रिका हुर्रिका बिल कसर, साकिन को जब हरकत देते हैं तो कसरा वाली हरकत देते हैं, तो नून को कसरा दे दिया तो क्या बन गया जैदुन निल अफजलू। तरीका समझ में आया, जा अनी जैदुन निल अफजलू, आया मेरे पास वो जैद जो सबसे अफजल है जो सबसे बेहतरीन है, या बा इजाफत, तीसरा तरीका यह है कि इजाफत के साथ इसमें तफसील इस्तेमाल हो, चूं जैदुन अफजलुल कौमी, जी तरकीब कीजिए जैदुन मरफू लफजान मुबतदा अफजलो मरफू लफजान सीगा इसमें तफजील और मुजाफ, मुजाफ भी हो रहा है ना, मरफू लफजान सीगा इसमें तफजील मुजाफ, और इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका फाइल जी, हां जो राजे है किसको जैद को, तो ये आपने रबत दे दिया, आगे अलकौमी उसका इराब बोलो मजरूर लफजन, मजरूर क्यों मुजाफिले है, मुजाफिले हमेशा क्या होता है मजरूर, तो अलकौमी मजरूर लफजन मुजाफिले अफजलो सीगा इसमें सीगा इसमें तफजील अपने फाइल और मुजाफिले से मिलकर शिबे जुमला होकर यह खबर मुबतदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ जैदुन अफजलुल कौमी, जैद उन लोगों में सबसे अफजल है, जैद उन लोगों में से बेहतरीन है, माना समझ में आया। वह अमल ओ दरफाइल बाशद, अब अमल बयान करने लगे हैं भाई, अस्माए आमिला बयान हो रहे हैं ना, अस्माए आमिला, और अस्माए आमिला में इसमें तफसील को भी जिक्र किया, और मैंने बताया इसका अमल बहुत मामूली है, यह किस में अमल करता है सिर्फ जमीर में अमल करता है, वही बयान कर रहे हैं, कहते हैं वह अमल ओदर फाइल बाशद, और इसका अमल फाइल में होगा वह आ हुआ अस्त, और वो हुआ जमीर है फाइल अफालू जो कि अफालू का फाइल है कि फाइल अफजलु, जो अफजलु का फाइल है कि दरो मुस्ततिरस्त, कि उसमें छुपी हुई है। आगे देखिए हश्तुम मस्दर, आठवां जो है वो मस्दर है। भाई मस्दर भी अमल करता है, इधर देखिए मस्दर भी अमल करता है और अपने फेल जैसा अमल करता है, अपने फेल जैसा। जरबुन मस्दर है और जराबा फेल है। जराबा फेल क्या अमल करता है, अपने फाइल को रफा देगा और बाकी चीजों को नसब देगा, सात चीजों को नसब देगा। इसी तरह जरबुन भी ये सारे अमल करेगा, अपने फेल वाले, अपने फाइल को रफा देगा और सात चीजों को नसब देगा, नसब देगा। मुझे आप बताइए जरबुन ये मस्तर है, जरब बगैर फाइल के हो सकती है, तो इसके लिए भी फाइल चाहिए। और जर्ब के लिए कोई मजरूब चाहिए कि नहीं चाहिए,
चाहिए।
मालूम हो इसके लिए मफूल भी चाहिए। और फिर ये किसी जमाने में भी होगी और किसी जगह पर भी होगी वगैरह, सारी वो चीजें जो अमल फेल करता था ये मस्तर भी करेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि फेल मारूफ जो है उसके लिए हमेशा फाइल चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता फेल मारूफ आ जाए और फाइल ना आए। जब भी फेल आएगा आपने फौरन किसको तलाश करना है, फाइल को। तवज्जो है। तो मस्दर जो है उसका फर्क यह है कि मस्दर के लिए भी हमेशा फाइल चाहिए, लेकिन मस्दर के साथ फाइल या मफूल वगैरह का जिक्र जरूरी नहीं। मफूल का जिक्र तो फेल के साथ भी जरूरी नहीं था, लेकिन फाइल का जिक्र जरूरी था, लेकिन मस्दर के साथ फाइल का जिक्र भी जरूरी नहीं। जिक्र कर दिया तो ठीक है, ना किया तो कोई हर्ज नहीं। फेल के लिए जैसे फाइल जरूर चाहिए, इसी तरह सिफत के सिगों के लिए भी फाइल या नाई फाइल जरूर चाहिए। जब भी जराबा आए आपने किसको तलाश करना है, फाइल को। जब भी जारिबुन आए आपने किसको तलाश करना है, फाइल को। जब भी मजरूबुन आए आपने किसको तलाश करना है, हां मजरूबुन, इसमें मफूल आए नायबुल फाइल को। और जब भी सिफत मुशब्बा आए आपने किसको तलाश करना है, फाइल को। जब भी इसमें तफजील आए आपने किसको किसको तलाश करना है, फाइल, वो उसी के अंदर जमीर होगी। मस्दर के लिए भी इसी तरह फाइल जरूर चाहिए, लेकिन इबारत में वो जिक्र होना जरूरी नहीं। आप जरबुन जिक्र कर दें और फाइल को जिक्र ही ना करें। तो मस्दर के लिए भी फाइल मफूल वगैरह चाहिए, लेकिन उनका जिक्र साथ जरूरी नहीं। हां मस्दर के साथ अगर फाइल जिक्र हुआ, मस्दर उसको रफा दे देगा। मस्दर के साथ अगर मफूल जिक्र हुआ, मस्दर उसको नसब दे देगा। वही अमल करेगा जो फेल करता था। तवज्जो है। मस्दर भी क्या करेगा, अपने फाइल को रफा और अपने मफूल को नसब। लेकिन ये जो मस्दर है इसको ज्यादातर इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि इसके बाद अगर फाइल या मफूल लाएं तो उसकी तरफ इसकी इजाफत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मसलन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैद ने मारा अमर को। किसने मारने वाला, कौन, जैद, और मारा किसको, अमर को। और मुझे अमर का ये मारना बड़ा पसंद आया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं कहूंगा आजबानी, मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। आजबानी क्या चीज पसंद आई, जरबुन, वो जर पसंद आई। किसने मुझे, या यूं कह मुझे ताज्जुब में डाला, मुझे ताज्जुब में डाला। आजबानी ताज्जुब में डाला मुझे, किस चीज ने ताज्जुब में डाला, जरब ने। कौन सी जरब, किसने लगाई, जैद ने। तो मैं कहूंगा आजबानी मुझे ताज्जुब में डाला, किसने ताज्जुब में डाला, जरब ने। तो वो जरब फाइल बनेगा, जरबुन आजबानी मुझे जरब ने ताज्जुब में डाला। भाई किसने किसको मारा, जैद ने। तो आगे मैं फाइल ले आता हूं, आजबानी जरबुन जैदुन। तवज्जो है। आजबानी जरबुन जैद, ये जरबुन क्यों मरफू, फाइल है आजबा का। इस जरब ने मुझे ताज्जुब में डाला है, या जमीर मफूल की है। ताज्जुब में किसने डाला, मैंने जरब को ताज्जुब में डाला है, जरब ने मुझे ताज्जुब में डाला, जरब ने ताज्जुब में डाला। तो जरब है फाइल, जरब है फाइल, और जरब किसने लगाई, जैद ने। तो जैद पर भी रफा है, आजबानी जरबोन जैदोन, ये जैद पर रफा है। ये क्यों रफा, रफा क्यों है, जे ये फाइल है जर्ब का, मस्तर के लिए भी फाइल चाहिए या नहीं चाहिए? जर्ब खुद ब खुद लग जाती है या कोई लगाने वाला चाहिए? लगाने वाला चाहिए। मालूम यह जर्ब किसने लगाई है? जैद। तो जैद फाइल है जर्ब का, और जर्ब फाइल है किसका? आजबानी का। तो आजबानी जर्बन जैदन। अब आपसे कोई पूछे यह जर्बन पर रफा क्यों पड़ा, आप क्या जवाब देंगे? फाइल है। और कोई आपसे पूछे ये जैदुन पर रफा क्यों पड़ा, आप क्या कहेंगे? किसका फाइल है? जर्ब का फाइल है। और आगे अमरन को मैं मंसूब ले आता हूं, आजबनी जरबुन अमरुन जैदन, आजबनी जरबुन जैदन अमरा। ये अमरन पर नसब आया क्यों? मफूल है किसके लिए? जर्ब के लिए। जैसे जराबा फेल के लिए फाइल और मफूल चाहिए, जर्ब के लिए भी क्या चाहिए? फाइल और मफूल। तो जर्ब मस्तर ने अमल किया, जैदुन को रफा दिया और अमर को नसब दिया। लेकिन उमूमन इस तरह कहते नहीं है आजबनी जरबुन जैदुन अमरन, बल्कि उमूमन मस्तर की इजाफत कर देते हैं फाइल या मफूल की तरफ। यहां मस्तर के बाद कौन है? फाइल है, तो फाइल की तरफ इजाफत कर दो, आजबनी जरबु जैदीन अमरन, अमरन उसी तरह रहेगा। मुझे ताजुब में डाला किसने? जरबु जैदीन, जैद के मारने ने किसको? अमर को। अमर जैद ने जो अमर को मारा, इस मारने ने मुझे ताजुब में डाला। माना सबको समझ में आ गया? मस्तर भी क्या अमल करता है? अपने फेल जैसा, फाइल को रफा देता है और मफूल वगैरह को नसब। लेकिन मस्तर में फर्क यह है कि उसमें फाइल को साथ जिक्र करना जरूरी नहीं। लिहाजा मैं यूं भी कह सकता हूं, आजबानी जरबु अलिफ लाम ले आया, अलिफ लाम ले आया, आज जरबू वो वाली जरब, कोई खास जरब है ना जिसने मुझे ताजुब में डाला है, और वो किसकी जरब है? जैद की, किसी और की जरब नहीं, तो वो खास जरब हुई। तो मैं यूं कहूंगा आजबानी जरबू, मुझे उस जरब ने ताजुब में डाला। भाई वो जरब किसने लगाई? फाइल यहां जिक्र नहीं, ना फाइल की जमीर है ना फाइल खुद जैद जिक्र है। तवज्जो है, ना हुआ जमीर है और ना जैद खुद जिक्र है। तो देखो मस्तर आ गया, और मस्तर तो बगैर फाइल के नहीं हो सकता, उसके लिए भी हमेशा क्या चाहिए? कोई फाइल। लेकिन फाइल को इबारत में जिक्र नहीं किया। तो मस्तर भी फाइल और मफूल चाहता है, लेकिन इसके फाइल और मफूल को इबारत में जिक्र करना जरूरी नहीं, जबकि फेल और शिबे फेल के लिए फाइल या नाई फाइल का जिक्र करना जरूरी है। और नीज मस्तर के साथ जब फाइल या मफूल जिक्र हो तो उमूमन उनकी तरफ मस्तर की इजाफत कर दी जाती है। आजबनी जरबु जैदीन अमरन, मुझे ताजुब में डाला जरबु जैदीन, किस चीज ने? जैद के मारने ने। किसको मारना? अमर को। जैद का अमर को मारना इसने मुझे ताजुब में डाला, जैद के अमर को मारने ने मुझे ताजुब में डाला। माना समझ में आया? और फिर मस्तर में एक और यह बात याद रखना कि मस्तर तब अमल करेगा जब यह मफूल मुतलक ना हो। अगर यह मफूल मुतलक हो फिर यह अमल नहीं करेगा। तवज्जो है, मस्दर के अमल के लिए शर्त है कि वह मफूल मुतलक नहीं होना चाहिए, मफूल मुतलक नहीं होना चाहिए। मफूल मुतलक किसे कहते हैं? वो मस्दर जो माकबल फेल के माना में हो। जरब तू जरबन, यह जरबन क्या है? मस्दर है और मंसूब है, और यह माकबल फेल के माना में है। जरब तू जरबन, यह जरबन क्या है? मस्दर है, मंसूब है और माकबल फेल के माना में है। मालूम हुआ यह मफूल मुतलक है। जहन में बात आ गई, मफूल मुतलक किसे कहते हैं? वो मस्दर जो माकबल फेल के माना में हो। जरब तो जरबन, यह जरबन क्या है? मफूल मुतलक, और मफूल मुतलक क्या होता है? मंसूब होता है, इसलिए यह मंसूब है। तो जरबन क्या है? मफूल मुतलक। यह जो जरबन मफूल मुतलक है ये अमल नहीं करेगा, ये अमल नहीं। क्यों नहीं अमल करेगा? वजह समझ लें। वजह ये कि मस्तर तो अमल करता है, लेकिन यहां जरबन मस्तर है और जरबन के साथ जरब तू फेल भी जिक्र है, फेल भी जिक्र और उसी फेल का मस्तर भी जिक्र है। और याद रखना फेल आमिल कवी है, फेल कवी, सबसे कवी आमिल क्या है? फेल है। फेल अपने मां बाद में भी अमल करता है, अपने माकबल में भी अमल करता है। जरब तू जैदन, मैंने पिटाई की, किसकी? زید کی. اسی زیدن کو میں ضربت پر مقدم بھی کر سکتا ہوں, زیدن ضربت, زیدن دیکھو ضربت اپنے سے ماقبل والے کو بھی نصب دے رہا ہے, حالانکہ عامل تو اپنے بعد آنے والے کو نصب دیتا ہے. ضربت زیدن, زیدن کہاں تھا؟ ضربت کے بعد تھا. اور عامل کیا کرتا ہے؟ معمول جب بعد میں آئے تو اس کو نصب دیتا ہے, لیکن فعل اپنے سے ماقبل میں بھی عمل کرتا ہے. زیدن ضربت, زید ہی کی میں نے پٹائی کی, تو یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول ہے. اس میں اس کو نصب کون دے رہا ہے؟ ضربت, حالانکہ وہ اس سے مؤخر ہے. تو فعل قوی عامل ہے, وہ اپنے سے ماقبل میں بھی عمل کرتا ہے اور اپنے سے ما بعد میں بھی, جبکہ مصدر جو ہے وہ ضعیف عامل ہے, وہ اپنے ما بعد میں تو عمل کرتا ہے, ماقبل میں عمل نہیں کرتا. تو یہاں پر ضربت ضربن فعل بھی موجود اور اسی کا مصدر مفعول مطلق بھی موجود, تو ایک قوی موجود ہے ایک ضعیف. جب قوی خود موجود ہے تو ضعیف کے عمل کی اجازت نہیں ہوگی. جب مصدر جب مفعول مطلق ہو وہ عمل کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اسی کا فعل موجود ہے. تو عمل کون کرے گا؟ اس کا فعل عمل کرے گا, یہ مصدر عمل نہیں کرے گا. ضربت ضربن, یہ ضربن عمل نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اسی کا فعل ضربت موجود ہے, جو عمل چاہیے وہ کر دے گا, تو اس کے عامل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں ہشتم مصدر بشرتے آن کے مفعول مطلق نہ باشد. آٹھویں قسم اسماء عاملہ کی وہ مصدر ہے بشرتے آن کے, اس شرط پر کہ مفعول مطلق نہ باشد, کہ یہ مفعول مطلق نہ ہو. عمل فعلش کند, یہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. عمل فعلش, شین کس لیے آتا ہے فارسی میں؟ اس کے لیے. فعلش اس کا فعل, کس کا فعل مراد ہے؟ مفعول مطلق کا. تو یہاں اس کے بجائے اپنا لفظ لیا, پھر ترجمہ ٹھیک بنتا ہے کہ یہ عمل فعلش کنت, یہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. تو کہتے ہیں ہشتم مصدر آٹھویں قسم مصدر ہے بشرطیاں کہ مفعول مطلق نہ باشد, بائیں شرط کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو. عمل فعلش کنت, یہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے, یعنی فائل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب, سارے وہی عمل کرے گا. چون اعجبنی ضرب زید عمرن, مجھے تعجب میں ڈالا زید کے عمر کو مارنے نے, زید نے جو عمر کی پٹائی کی اس نے مجھے تعجب میں ڈالا. ترکیب کیجئے, اعجبا فعل, نون وقایا, یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی, ضرب مرفوع لفظان مضاف. مرفوع کیوں؟ فاعل ہے آجبا کے لیے, اس نے مجھے تعجب میں ڈالا ہے. ضرب مرفوع لفظان مضاف, زیدن مجرور لفظان مضاف الیہ. تو زیدن لفظوں میں مجرور ہے مضاف الیہ, لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے, یہ ضرب کا فاعل ہے. کیونکہ میں نے بتایا مصدر استعمال کس طرح ہوتا ہے, عموماً مصدر اپنے فاعل یا مفعول کی طرف اضافت کر دیتے ہیں, اس کی کیا کرتے ہیں؟ اضافت. تو یہ زیدین اس کا فاعل ہے لیکن مضاف الیہ ہے, مجرور ہے, لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے, کیونکہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو ضرب مرفوع لفظاً مضاف, زیدین مجرور لفظاً مضاف الیہ, اور عامران یہ منصوب لفظاً مفعول بھی ہے. کس کے لیے؟ ضرب کے لیے, ضرب کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی. آجبانی کا مفعول پہلے گزر چکا ہے, یا ضمیر ہے, تو یہ عامران یہ ضرب کے لیے مفعول بھی ہے. ضرب مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر یہ فاعل ہوا, کس کے لیے؟ آجبا. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے, ضرب سے جن چیزوں نے جڑنا ہے ان کو جوڑ کر پھر اس کو فاعل بنانا ہے. ضرب مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر یہ فاعل, فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہاں مصدر کے بارے میں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا. یاد رکھو یہ مصدر جیسے معروف آتا ہے اسی طرح مجہول بھی آتا ہے. جیسے فعل معروف اور مجہول ہوتا ہے اسی طرح مصدر بھی معروف اور مجہول ہوتا ہے, مجہول ہوتا ہے. جیسے دیکھو ایک ہے پٹائی کرنا اور ایک ہے پٹائی کیے جانا, یعنی پٹائی ہونا, پٹائی जराबा जैदुन, जैद क्या है? पिटाई करने वाला। और आमरन, किसकी पिटाई की? आमर की। तो आमर की पिटाई हुई है, आमर की पिटाई की गई है। जैद पिटाई करने वाला और आमर की पिटाई की गई। तो पिटाई करना ये भी मस्तर, और पिटाई किए जाना या यूं कह लो पिटाई होना ये भी क्या है? मस्तर। उर्दू में मस्तर की अलामत है ना, ना आता है उसके आखिर में। पिटाई करना ये भी मस्तर, पिटाई होना ये भी मस्तर। तो एक जैसे फेले मारूफ है इसी तरह मस्तर मारूफ भी आता है, और जैसे फेले मजहूल है इसी तरह मस्तर मजहूल भी आता है। जैसे पानी पीना, और एक है पानी पिया जाना। पानी पीना मस्तर मारूफ, और पानी पिया जाना ये क्या है? मस्तर मजहूल। खाना खाना ये है मस्तर मारूफ, और खाना खाया जाना ये क्या है? मस्तर मजहूल। देखो जैद पिटाई करता है, जराबा जैदुन आमरान, पिटाई करने वाला कौन? जैद। तो जैद की सिफत है जर्ब, यानी ये पिटाई करना है। जैद की सिफत क्या है? जर्ब। जैद की सिफत है, पिटाई किसने की? जैद ने। तो ये जर्ब किसकी सिफत? जैद ने। जैद की सिफत जैद है, तो ये वाली जर्ब है। जैद ना होता तो जैद वाली जर्ब होती नहीं। तो ये जर्ब जैद की सिफत है, ये जैद ने लगाई है तो ये जर्ब है। जैद ना होता तो ये वाली जर्ब भी ना होती। खालिद बकर की जर्ब तो हो सकती थी, लेकिन अगर जैद ना होता तो जैद की जर्ब नहीं हो सकती थी। और किसकी पिटाई की है? आमर की। तो आमर पर जर्ब वाके हुई है, तो आमर की सिफत है जर्ब किए जाना या जर्ब होना। आमर की सिफत क्या है? इसकी जर्ब, इस पर जर्ब वाके हुई है। क्या हुई है? जैद जर्ब लगाने वाला है, और आमर कौन है? इस पर जर्ब वाके हुई है। इसी तरह मसलन आप कहते हैं जैद ने खाना खाया, जैद ने खाया। और दूसरा आप जुमला बोलते हैं खाना खाया गया, खाना किसने खाया? फाइल जिक्र ही नहीं है। तो जैसे खाना खाना ये मस्तर है, इसी तरह खाना खाया जाना ये भी क्या है? मस्तर है। जैसे जैद ने पानी पिया, और दूसरा जुमला आप फाइल को हजफ कर देते हैं, पानी पिया गया, जुमला पूरा है लेकिन फाइल का जिक्र नहीं। तो पानी पीना ये भी मस्तर, और पानी का पिया जाना ये भी मस्तर है। लेकिन एक मस्तर मारूफ है, एक मस्तर मजहूल है। उर्दू में दोनों के वजन अलग अलग हैं। पानी पीना यह है मस्तर मारूफ, या यूं को पीना, पीना यह क्या है? मस्तर मारूफ। और पिया जाना यह क्या है? मस्तर मजहूल। खाना खाना यह क्या है? मस्तर मारूफ। और खाया जाना मस्तर मजहूल। मारना यह क्या है? मस्तर मारूफ। और मारे जाना मस्तर मजहूल। बात समझ में आ गई? तो जैसे मस्तर मारूफ होता है इसी तरह मस्तर मजहूल भी होता है। तो उर्दू में तो दोनों अलग अलग हैं। देखो खाना अलग मस्तर, और खाया जाना अलग मस्तर, पीना अलग मस्तर, और पिया जाना अलग मस्तर, मारना अलग है और मारे जाना अलग है। उर्दू में तो पहचान हो जाती है अलग अलग है मारूफ और मजहूल, लेकिन अरबी में वही जर्ब मारने के लिए भी इस्तेमाल और मारे जाने के लिए भी इस्तेमाल, वही शुर्ब पीने के लिए भी इस्तेमाल और पिए जाने के लिए भी इस्तेमाल, वही अकल खाने के लिए भी इस्तेमाल और खाए जाने के लिए भी इस्तेमाल। बतलाना यह चाहता हूं कि अरबी में जो मस्तर आता है यह मारूफ भी इस्तेमाल होता है और मजहूल भी, यानी एक ही वजन मारूफ के लिए भी है और वही वजन मजहूल के लिए भी है, दोनों में कोई फर्क नहीं। जर्ब का माना पिटाई करना भी, और जर्ब का माना पिटाई होना भी। इस तरह शुर्ब का माना पीना भी, और शुर्ब का माना पिया जाना भी। अकल का माना खाना भी, और अकल का माना खाया जाना भी। तो एक ही मस्तर अरबी में मारूफ के लिए भी इस्तेमाल होता है और मजहूल के लिए भी इस्तेमाल होता है। और मस्तर मारूफ के लिए तो फाइल चाहिए, मस्तर मजहूल के लिए क्या चाहिए? नाइफ फाइल चाहिए। भाई वही जाब्ते हैं सारे। मस्तर मारूफ के लिए क्या चाहिए? फाइल। और मस्तर मजहूल के लिए नाइफ फाइल चाहिए। और यही नुकता है गर्दानों के अंदर, देखो बुजुर्गों की एक बात भी बिला वजह नहीं। आप गर्दान पढ़ते हैं सरफे सगीर जरब यजिबु जरबन फहुआ जारिबुन, देखो यह सरफे सगीर कहलाती है, छोटी गर्दान है। आप कहेंगे इसमें तो 15-20 सीगे आते हैं, आम गर्दान में तो 14 सीगे आते हैं। नहीं भाई, ये छोटी गर्दान है, इसमें एक एक सीगे से पूरी पूरी गर्दान की तरफ इशारा हो रहा है। जराबा माजी के कितने सीगे हैं?
14।
लेकिन यहां है जराबा यजरीबु जरबान, सिर्फ जराबा पहला सीगा लिया, बाकी पूरी गर्दान छोड़ दी, इशारा कर दिया कि जराबा की माजी की गर्दान कैसे शुरू होगी, जराबा से। बाकी सीगे आप खुद कर लेना। मुजारे के कितने सीगे? 14। लेकिन यहां यजरीबु सिर्फ एक सीगा दे दिया कि बाकी गर्दान खुद कर लेना इस वजन पर। फिर जराबा यजरीबु जरबान, ये क्या आया? मसदर। और ये मफूल मुतलक है, इसलिए मंसूब है क्योंकि ये मसदर है और मसदर माकबल फेल के माना में है, और मसदर माकबल फेल के माना में हो उसको क्या कहते हैं? मफूल मुतलक। और मफूल मुतलक क्या होता है? मंसूब। इसीलिए इसको मंसूब रखते हैं गर्दानों में, यह मफूल मुतलक है। जरब यजिबु जरबन फहुआ जारिबुन, यह इसमें फाइल का सिर्फ एक सीगा लिया, बाकी गर्दान आप खुद कर लेना। आगे क्या? जुरेबा व जुरेबा, जुरेबा के कितने सीगे माजी मजहूल के?
14
सीगे, लेकिन सिर्फ एक जुरेबा लाए, बाकी गर्दान आप खुद पढ़ लेना। आगे मुजारे मजहूल आया यूजराबू, यूजराबू के कितने सीगे?
14,
लेकिन सिर्फ यूजराबू लाए, इशारा कर दिया, बाकी गर्दान खुद कर लेना। फिर आगे क्या लाए? जरबन, जरबन। सवाल पैदा होता है, भाई ये तो छोटी सी गर्दान है, 14 सीगों में से एक एक सीगा लेकर बस इशारा करते जा रहे हैं, फिर ये जरबन दोबारा क्यों लाए? जरबन तो एक दफा गुजर चुका था, तो ये तो बेकार हुआ लाना। जवाब आज आपको समझ में आ गया कि ये दूसरा जरबन जो लाए ये बेकार नहीं लाए, ये बतलाना चाहते हैं कि वो जो जरबन था वो मस्दरे मारूफ था, ये जो जरबन है ये क्या है? मस्दरे मजहूल है। और बतलाना चाहते हैं कि दोनों का वजन बिल्कुल एक जैसा है, वो भी जरबन ये भी जरबन, वो फेले मारूफ के बाद आया था तो वो क्या था? मस्दरे मारूफ। और ये फेले मजहूल के बाद आया है तो ये मस्दरे मजहूल है, लेकिन दोनों का वजन एक ही है। आपने मौके पर गौर करना है कि मस्दरे मारूफ है या मस्दरे मजहूल है, लफ्जों में आपको फर्क नजर आएगा, दोनों एक जैसे सीगे हैं। बात समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हासिल कलाम फिर सुन लें भाई। आज आपने इसमें तफजील और मसदर के बारे में पढ़ा। इसमें तफजील मैंने बताया वो ज्यादती बयान करता है किसी चीज के मुकाबले में। आप मुतलकन किसी चीज में ज्यादती बयान करना चाहें तो उसके लिए मुबालगे के सीगे हैं, जैसे जारिब से क्या है मुबालगे का सीगा? जर्राबुन। मानिया से क्या है? मन्नाउन, खूब मना करने वाला। तो ये मुबालगे के सीगे। तो अगर आप मुतलकन ज्यादती बयान करना चाहते हैं तो ये आम मुबालगे के सीगे इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप किसी चीज के मुकाबले में ज्यादती बयान करना चाहते हैं तो फिर इस सूरत में इसमें तफजील इस्तेमाल करेंगे। और फिर यह भी मैंने बताया कि इसमें तफजील अफालू वजन पर आता है सिर्फ सुलासी मुजर्रद से, सुलासी मजीद से भी नहीं आता, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद से भी नहीं आता। किस वजन पर? अफालू। लेकिन अफालू जो भी आपके सामने आ जाए आप आंखें बंद करके यह ना कहना कि इसमें तफजील है, बल्कि आज आपको पता चल गया कि एक अफालू सिफती भी होता है, यानी सिफत मुशब्बा, और वो किन बाबों से आती है? जिनमें रंग और ऐब, जाहिरी ऐब वाला माना पाया जाए, तो से जो अफालू आता है वो इसमें तफजील नहीं है बल्कि वो सिफत मुशब्बा। लिहाजा वहां ज्यादा वाला तर्जमा नहीं करना। अबियस का माना ज्यादा सफेद नहीं बल्कि इसका माना है सफेद। अहमर का माना ज्यादा सुर्ख नहीं बल्कि इसका माना है सुर्ख। आरज का माना ज्यादा लंगड़ा नहीं बल्कि इसका माना है लंगड़ा। आमा का माना ज्यादा अंधा नहीं बल्कि इसका माना है अंधा, क्योंकि यह सब सिफत मुशब्बा है। फिर इसमें तफसील के इस्तेमाल के तीन तरीके आपने पढ़े कि इसके इस्तेमाल के तीन तरीके हैं, या ये इस्तेमाल होगा किसके साथ? मीन के साथ, या अलिफ लाम के साथ, या इजाफत के साथ, लेकिन होगा एक वक्त में एक ही तरीके से इस्तेमाल। अगर मीन के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो इस पर अलिफ लाम भी नहीं आ सकता और इसकी इजाफत भी नहीं हो सकती, और अगर इजाफत के साथ है तो फिर अलिफ लाम भी नहीं आ सकता और मीन भी नहीं आ सकता, और अगर अलिफ लाम के साथ है तो भी इजाफत भी नहीं हो सकती और मीन भी नहीं आ सकता। और मैंने बताया यह बड़ा कमजोर आमिल है, यह सिर्फ अपनी जमीर में अमल करता है जो इसी के अंदर छुपी हुई होती है, छुपी हुई। इसमें जाहिर में यह अमल बहुत कम करता है और उसकी कुछ खास शर्तें हैं जो अगले दराजात में आप पढ़ेंगे भाई। तो यह कमजोर आमिल है और यह सब शिबे जुमला है। ये सब क्या हैं? इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफत मुशब्बा, इसमें तफजील, ये सब क्या हैं? शिबे जुमला हैं। और इसी तरह ये मस्तर वगैरह, और मस्तर मैंने बताया कि ये अमल करता है अपने फेल जैसा अमल करता है। अगर मस्तर मारूफ है तो फेल मारूफ जैसा अमल करेगा, अगर मस्तर मजहूल है तो फेल मजहूल जैसा अमल करेगा। और एक शर्त है इसके अमल के लिए कि यह मफूल मुतलक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यह मफूल मुतलक है तो मालूम हुआ इसका फेल भी वही मौजूद है इससे पहले, तो मस्तर भी मौजूद और माकबल में इसी का फेल भी मौजूद, और फेल कवी आमिल है और मस्तर ज़ईफ आमिल है। जब कवी मौजूद है तो फिर ज़ईफ को आमिल बनाने की जरूरत नहीं, फिर सारा अमल वो फेल करेगा। और यह भी आपने पढ़ा कि यह अमूमन इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है कि इसके अपने फाइल या मफूल की तरफ इजाफत कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? इजाफत कर दी जाती है। और नीस ये भी आपने पढ़ा कि मस्तर भी दो किस्म पर है, मारूफ भी है और मजहूल भी है, और इसी वजह से गर्दानों के अंदर ये जो जरबन है दो दफा लाया गया ये बतलाने के लिए कि एक मस्तर मारूफ है और दूसरा मस्तर मजहूल, और दोनों का वजन बिल्कुल एक जैसा होता है। इसलिए तमाम गर्दानों में आपने आप देख लें, अक्रम युक्रिमो इकरामन फहुआ मुक्रिमन व उक्रिम युक्रमो इकरामन, वही इकराम दोनों के लिए आ रहा है। तमाम बाबों में मस्तर मारूफ और मजहूल का वजन एक होता है। बात सबको अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।